जैसे तुमसे पहले पर फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। इस्लाम में कुन तत्तकून की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने जो बातें लिखी हैं उनमें से ये बात भी लिखी है कि अगर तुम इन रोज़ों पर अमल करोगे, रोज़ों की फर्जियत को पूरा करोगे, उन्हें रखोगे तो तुम्हारे अंदर तकवा आ जाएगा। इसके ज़िम्मे में जो बातें समझाई गई हैं उसमें एक बात यह भी है कि ऐसा रमज़ान का मुबारक महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान पाक के नाज़िल किए जाने का। कुरान जो है वो इत्तेबा ज़िंदगी का मुतालबा करता है अपने अपने ईमानदार वालों से, अपने मानने वालों से। कुरानी ज़िंदगी अलग है इंसानी इंसान की अपनी तबीयत वाली ज़िंदगी से, एक है इंसान की तबीयत वाली ज़िंदगी और एक है कुरानी ज़िंदगी। फितरत इंसान की जो है वो बिल्कुल कुरानी ज़िंदगी के मुआफ़िक है, लेकिन तबीयत इंसान की जो है वो कुरानी ज़िंदगी के मुआफ़िक नहीं है। आदमी का अपना ज़ाती रुझान जो होता है उसकी तबीयत के अतबार से, उसकी तबीयत में चार चीज़ें हैं जिससे ये इंसान का जिस्म बना है, आग पानी मिट्टी हवा, रूह से हटकर है ये चीज़। जो इंसान की बॉडी इंसान का जिस्म जिस चीज़ से बना, जिन अनासिर से बना, उन अनासिर की जो खसूसियात हैं, मिट्टी में एक खसूसियत है, पानी में एक खसूसियत है, हवा में एक खसूसियत है, आग में एक खसूसियत है। जैसे आपकी खसूसियत भड़कना है, जलना जलाना है, उसी वजह से आदमी को गुस्सा आता है। मिट्टी की खसूसियत तमा है, लालच है, जो चीज़ डालो अंदर खा जाती तो उसी वजह से आदमी में हिरस और तमा होती है। लंबी लंबी प्लानिंग, बड़ी बड़ी छोड़ना उड़ना उड़ाना, ये जो है ये सब हवा की खसूसियत है। फैलना, जहाँ मौका मिले वहाँ घुस जाना, जायज़ ना जायज़ की परवाह किए बगैर, ये पानी की खसूसियत है, क्योंकि पानी को जहाँ रास्ता मिले घुस जाता है। तो जो आग पानी मिट्टी हवा की जो खसूसियत है, ये खसूसियत कुरानी ज़िंदगी के खिलाफ है। यह खसूसियत इंसान इसी वजह से कहते हैं इंसान की जो तबीयत है जिसका दूसरा नाम नफ्स है, तो तबीयत वाली जो ज़िंदगी है वो अम्मारा बिस्सू है, बुराई की तरफ चलाने वाली है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारी नज़र खुद से नेकी की तरफ चले, खुद ही जमात में जाने का तकाजा हो जाए। खुद ही जमात में जाने का तकाजा कभी नहीं होगा, इल्ला है कि जमात में जाते 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 आदमी को आदत पड़ गई हो तो होगा फिर, या इल्ला है कि आदमी को अल्लाह रसूल से इतनी मोहब्बत हो जाए कि उसकी मोहब्बत सब पे गालिब हो गई हो तो होगा फिर, या है कि दुनिया के हालात की वजह से आदमी इतना सदमे में आ जाए कि दुनिया से उसका दिल सर्द हो जाए, ठंडा हो चुका हो तो होगा। उसके जो असबाब होते हैं वो ये होते हैं कि या तो आदमी इतना एकदम सर्द हो चुका है, दुनिया से उसका दिल उचाट हो चुका है, वो खुद दुनिया से मर जाना ही चाहता है, वो सोचेगा चलो आखिरत में कुछ काम करूँ। जब तक हम दुनिया में हैं उस वक्त तक ऐसा होता नहीं उसको, या फिर आदमी पर अल्लाह रसूल की मोहब्बत का गलबा इतना हो कि गलबा अकली से हट के तबीयत पर आ चुका हो। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दो किस्म की होती है, एक मोहब्बत ही दो किस्में हैं, एक मोहब्बत तबीयी और एक मोहब्बत अकली। इस्लाम में जिस चीज़ की मोहब्बत का हुक्म है कि तुम अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो, गुरु सासलम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो, हत्ता कि अपनी औलाद से भी ज़्यादा करो, अपनी बीवी से भी ज़्यादा करो, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा करो, फिर अपनी ज़ात से भी ज़्यादा करो, अगर तुम जब अल्लाह रसूल से इतनी मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ईमान नहीं होगा। लाइकिन आमकुम हत्ता यकुना हत्ता आकुना हत्ता आकुना अहब बढ़े, यहाँ तक कि मैं सबसे ज़्यादा उसको महबूब ना हो जाऊँ, मैं वालिद ही व वलद ही वन्ना से अजमाई, औलाद से भी माँ बाप से भी सबसे भी। यह मोहब्बत से मुराद अकली होती है, यानी अकल से आदमी को यह तजवीज़ करना होता है, अगर इनका मुकाबला पड़ जाए तो मैं अल्लाह की मर्जी को तरजीह दूंगा, अगर इनका मुकाबला पड़ जाए तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और उनके तरीके को और उनकी तालीम को तरजीह दूंगा और हिम्मत करके तरजीह देना। यह मोहब्बत मुराद हुआ करती है, मोहब्बत अकली कहते हैं इसको। लेकिन कभी कभी ये तबीयत में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे इंसान की मोहब्बत माँ से हो जाती है, माँ से होती है, या औलाद से होती है, या माँ बाप से होती है, बीवी से होती है, बीवी के शौहर से होती है, ये मोहब्बत तबीयत कहलाती है। कभी ऐसी भी हो जाती है तब ऐसी सूरत में आदमी को नीम के दावों के करने का तकाजा अलफुल हो सकता है, वरना उमूमन नहीं होता। इस वास्ते कि हमारी तबीयतें हैं वो अलग हैं, इसी वजह से जो है मुजाहिदे की हकीकत, मुजाहिदे की हकीकत कश्मकश है, जुहद की हकीकत कश्मकश है। कश्मकश का मतलब ये कि एक तरफ से एक चीज कीजिएगी, एक तरफ से एक चीज कीजिएगी। तो दीन में मुजाहिदा है का मतलब ये है कि आपकी तबीयत नहीं चाहेगी, आपको करना होगा। मुजाहिदे की हकीकत ये है, और पुरानी बात ये है कि जो मुजाहिदे पर आएगा उसको रास्ता मिलेगा। जो जोहद पर आएगा, यानी जो इस कश्मकश को कबूल करेगा, करूं या ना करूं के इस आर्गुमेंट के अंदर जो अंदर आदमी के चलता रहता है, उस आर्गुमेंट में गालिब करेगा करने वाले पहलू को दीन के मामला में, उसी का नाम मुकाबला जोहद की हकीकत ही वो है। तो खुद से नहीं चाहा करती तबीयत, इस बात की जो हमारी तबीयत की खसूसियतें हैं वो है जिससे इंसान को निकाला जाता है शरीयत के जरिए से। एक बहुत बड़ा राजदारी का बाब है, सीक्रेट बाब है, बोला यहाँ से माना। वो सीक्रेट बाब का खुलासा ये है कि जन्नत में ये जिस्मानी खसूसियात नहीं चलेगी, जन्नत में ये जिस्मानी खसूसियात नहीं चलेगी, जहाँ हिस्स हो, जहाँ तमा हो, जहाँ पर गुस्सा हो, एंगर हो, और जन वाला जहाँ पे इस किस्म की जो तनात हो, कमीनापन हो, बुखल हो, बुजदिली हो, वो ये खसूसियात जो तबीयत की है असल में, ये तभी खसूसियात जन्नत के लायक नहीं। और इसी वजह से इन खसूसियात के साथ जन्नत इस बंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वहाँ इसको रहने नहीं दिया जाएगा। मैं ये नहीं रह सकता, ये जन्नत को जहन्नम बनाएगा किसी ने, ये किसी दिन जन्नत को क्या करेगा, जहन्नम बनाएगा, और ये किसी दिन और जन्नतियों की जन्नत के मजे खराब करेगा। अब वहां गुस्सा करेगा तो इसको तो गुस्सा आया, लेकिन जिस पे गुस्सा करेगा उसकी तो जन्नत खराब हुई ना, उसका तो मजा कितना हो गया। तो जो तभी खसूसियात हैं, इन तभी खसूसियात को खत्म करना, ये शरीयत का, शरीयत की तालीमात का एक वो जौहर भी है, उसके राजों में से एक राज है। तो रमजान मुबारक के जरिए से रोजा रखवा के तभी खसूसियात को मुस्तमैल किया जाता है, रूहानियत डाली जाती है ऊपर से, कुरान पाक पिलाया जाता है, नमाज का मुजाहिदा उस पर डाला जाता है एक्स्ट्रा जायद तरीके पर, जो फर्ज नमाज है उसके अलावा और मजीद उतनी नमाजें जो और दिनों में, रेगुलर दिनों में जितनी नमाजें एक आदमी पढ़ता है, जो फर्ज नमाजें फर्ज रखाते हैं रेगुलर दिनों में, वो 20 हैं। हर आदमी पर दिन में 20 रकाते असल हैं, आप हिसाब करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, वाजिबुल फितर के 3 मिला है। तो रमजान में रोजा रखने के साथ में ये 20 एक्स्ट्रा इसलिए कर लिए जाते हैं कि रोजा भी हो प्लस ये डबल काम हो जाए। इस मुजाहिदे के जरिए से इसमें सबर आएगा, बर्दाश्त आएगी और कबूलियत आएगी कुरान वाली जिंदगी को लेने। इसी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुवा शहरुस सबर, ये सबर का महीना, रमजान का महीना सबर वाला महीना है। तो लिहाजा जो रमजान मुबारक में रोजे रखा, जिसने रमजान मुबारक में तरावी पढ़ी, उसमें कुछ ना कुछ सबर के असरात आना चाहिए, और अल्लाह की दात से उम्मीद है कि आए होंगे, अल्लाह करे कि आ जाए हम सब में। इस वास्ते कि दीन सबर से ही जुड़ा हुआ है, कितनी बर्दाश्त है आदमी, कितना सहार सकता है, कितना तहमुल है, दीन का सारा मामला इसी से। नमाज भी वही आदमी पढ़ सकेगा जिसमें सबर हो, रोजा भी वही रख सकेगा जिसमें सबर हो, हज भी वही कर सकेगा जिसमें सबर हो, ज़कात भी वही दे सकेगा जिसमें सबर हो, क्योंकि सबर की तफसीलात की बात भी आती है, और दूसरे काम भी, और दीन के तकाजों को वही पूरा करेगा जिसमें सबर हो। दीन के तकाजों में सबर है, जो मेहनत मशक्कत को बर्दाश्त कर सकता हो, तपती हुई धूप में काम काज के साथ, जॉब के साथ, फिर भी आदमी जो है ना भूखा और प्यासा है, जो चीज़ नाजायज है वो तो नाजायज है, लेकिन जो जायज़ है वो भी नाजायज की भी है, चाहे मगरिब में और शहर में आदमी कितना ही खा ले, लेकिन टाइम ड्यूरेशन तो बहुत बढ़ ही जाता है ना, जैसा भी ज़्यादा खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुजुर्गों ने फरमाया है कि बुजुर्ग दो किस्म के गुजरे हैं कि रमजान में ज्यादा मत खाओ ताकि रोजे का मकसूद हासिल हो, और बुजुर्गों की एक किस्म वो है जो यूँ कहती है कि जितना चाहे खाओ, जो मुजाहिदा है वो पढ़ने वाला है, इसलिए कि वो 3-4 घंटे में फिनिश हो जाता है, चाहे ज्यादा खाओ चाहे कम खाओ, 4 घंटे में हाजम रापे हो जाता है। हजम की 3 किस्में होती हैं, हजम रापे जो है बिल्कुल आखिरी वाला हजम जो होता है वो 4 घंटे में हो चुका होता है, तो उसके बाद में तो आप ज्यादा खाए हुए हों या कम खाए हुए हों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। जो मुजाहिदा अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बंदे को कराने का, वो मुजाहिदा पड़ जाता है। अब ये पूरी दुनिया में चूंकि इस्लाम चूंकि आलमगीर है, इस्लाम आलमगीर है, आलमी है, इसी वजह से ये उम्मत आलमी है, इसलिए इसका काम आलमी है, इसलिए इसके तकाजे आलमी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियां आलमी है, इसलिए इसकी सोच भी आलमी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान की सोच को आलमी बनाया, नहीं है तो बनाओ अपनी सोच आलमी, मुसलमान के तकाजों को आलमी बनाया, तुम्हें पूरे आलम के तकाजों को लेना होगा, इसके काम को आलमी बनाया, तुम्हारा काम किसी एक इलाके में किसी एक जगह पर किसी एक मस्जिद में किसी एक लोकेशन पे दायर होकर मरकूज होकर नहीं रहेगा, और इसी वजह से मुसलमान के काम के असरात आलमी होंगे और मुसलमान के काम को उसका सवाब आलमी दिया जाएगा, इसके काम का सवाब ये भी आलमी होगा, काम तो इसने यही किया था सवाब इसको बोल जाता है क्योंकि इसके काम का दायरा ही वैसा है। जिस हाउस में आदमी पानी डालेगा उस हाउस के अंदर इजाफा कम होगा, पानी निकालेगा तो उसमें कमी आएगी, पानी डालेगा तो जो हाउस होगा, तो चूँकि हमारा उम्मत मुसलमान उम्मत मुस्लिमा का जो काम है वो आलमी है, यानी इसका हाउस आलमी है, इसका जो हाउस है वो आलमी है, लिहाजा उसमें जो पानी डाला जाएगा वो आलमी होगा, इसलिए वो पूरे आलम में शरीक होगा। तो चूंकि ये पूरी की पूरी उम्मत आलमी है, इसलिए अल्लाह पाक ने आलम पर असरात आने के लिहाज से रोजों का निज़ाम जो है वो चांद से रखा, सूरज से नहीं रखा, क्योंकि सूरज से अगर रखता तो वो एक ही एतबार से होता, या धूप में रोजे आ रहे हैं धूप में आते उम्र भर, जहाँ सर्दियों में रोजे आ रहे हैं वहाँ सर्दियों में आते उम्र भर। चांद से रखने में हुआ ये कि कहीं रोजे आपके पास कम होंगे कहीं दूसरों के पास ज्यादा हो जाएंगे, कहीं दूसरों के आपके पास ज्यादा होंगे दूसरों के पास में कम हो जाएंगे, टाइम घटता बढ़ता रहेगा। ये आलमी होने की वजह से पूरा पूरा इस्लाम चूंकि आलमी तालीमात रखता है और उसमें कुछ दूसरे इंडिविजुअल और इंफरादी भी होते हैं, इस वजह से अल्लाह पाक ने दोनों किस्म की चीज़ों की रियायत फरमाई हुई, शम्स निज़ाम भी है इसमें, कमरी निज़ाम भी है, सूर्य के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं, चाँद के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। हम ताला शाह ने इस आलमी मिजाज की वजह से इस उम्मत मुस्लिमा को जिम्मेदारियाँ आलमी दी। तो रमज़ान के इस मुबारक महीने में मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें एक मौका दिया और हमने अल्लाह की तौफीक से जो कुछ हमसे हो सकता है अपने गुनाहों के साथ अपने दौलतों के साथ जो कुछ भी किया, मगर उसमें एक बात ये हुई कि कुरान वाली जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक एक ख़ास इस्तेदाद आ गई। अल्लाह से यही उम्मीद रखना चाहिए कि आगे बहुत सी चीज़ें आदमी को नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, हुआ नहीं हुआ उसको कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ, जो रूहानियत वाले हैं उनको अंदाज़ा होता है, यह है कि जो डॉक्टर है वो बताता है कि तुम्हारे मिजाज के अंदर क्या तब्दीली आई क्या तब्दीली नहीं आई, क्यूर हुआ नहीं हुआ, ये बीमारी गई या नहीं गई। तो हमें ये बताया गया कि जो जो रमजान मुबारक के रोजे रखेगा और एहतियात के साथ में रखेगा और अल्लाह तबारक को बताया कि यहाँ से कबूलियत उसको मिल जाएगी, उसकी तो रूहानियत उसको मिलना ही मिलना है, यकीनन मिली होगी। तो इसलिए इस मुबारक महीने में रहकर कुरान वाली जिंदगी का मुजाहिदा करने की इस्तेदाद आ गई, तो ये खुश होने की बात है कि अगर हमारे सामने दीनी तकाजे आते हैं और दीन के लिए मुजाहिदा करने का मौका आता है तो हम पहले के मुकाबले में और ज़्यादा हिम्मत के साथ कर सकते हैं और ज़्यादा बर्दाश्त के साथ कर सकते हैं और ज़्यादा उन तकाजों को ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करना है कि ऐसा हो सकता है, हम तो यही समझे हुए हैं कि यार अपने से अब नहीं होता, मैं क्यों नहीं होता, किसने कहा आपसे नहीं होता। बहुत मरतबा होता है कि बीमार बोलता है कि मेरे से नहीं होता, डॉक्टर बोलता नहीं तेरे से होता है, तो इसको कर सकता है तू, हमारे बड़े बताते हैं कि होता है। और अजीब बात दीन की है कि दीन के मामले में जाहिरी बीमारियों को और आजार को छोड़कर जितना ज़्यादा आदमी आगे जाता है उतनी इस्तेदाद उसकी बढ़ती है, पीछे नहीं आती। दीन में इस्तेदाद के आगे बढ़ने का निज़ाम है, पीछे आने का नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि दीनी लाइन की चीज़ों के अंदर रिटायरमेंट नहीं होता,
आप ये नहीं देखेंगे कि इमाम साहब का रिटायरमेंट हो गया, हाफिज साहब का रिटायरमेंट हो गया, पढ़ा नहीं सक रहे, शेखुल हदीस साहब का रिटायरमेंट हो गया, शेखुल हदीस एक मतलब शेखुल हदीस बन गया तो मरे तक शेखुल हदीस ही रहता, इमाम एक मतलब इमाम बन गया तो मरे तक इमाम रहता, इलाह के कोई दूसरे हालात पैदा हो जाए तो एक अलग बात है, बकिया उसकी इस्तेदाद के एतबार से जैसे दुनियावी जाब की शक्लें होती हैं कि उसमें आदमी को 65 के बाद में वो नहीं कर सकता, कहीं 65 है कहीं 55 है, हमारे पास 55 है 58 है, तो वो सेहत के एतबार से होता है मसला, दीन में नहीं होता। इसका मतलब ये बना कि दीनी तकाजों के एतबार से हम लोग जो मुजाहदे पहले कर सकते थे अब और ज्यादा कर सकते हैं, इलाज किसी को आजार ही पेश आ गया वो जिस्मानी तो एक अलग बात है, वो इस्तिस्नाई शक्ल है, और इन जनरल जाहिरी तौर पर अगर कोई ऐसा उज़्र पेश नहीं आया है तो ये ना समझें कि अब हम नहीं कर सकते, अब हमारी मसरूफियत ज्यादा हो गई है या हम जो है ज्यादा बिजी हो चुके हैं या कमजोर हो चुके हैं मुजमैल हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इस्तेदाद इस उम्मत के अंदर रखी हुई है, इस उम्मत में जो इस्तेदाद है मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे और आपको थोड़ा इन चीजों को इस वजह से जानना जरूरी है कि हिम्मत भी आए और हकीकत का पता भी चले। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे भाई कि अगर हम उसको पहचान ले तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे एक बहुत बड़ा बूस्ट हमको मिल चुका हो। हर उम्मत में जो इस्तेदाद है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का असर है। आप बुजुर्ग को क्या समझते हैं, बुजुर्ग की सिफात को क्या समझते हैं, उनका क्या पावर है, उनकी क्या रूहानियत है, उनकी क्या नूरानियत है, उनके क्या असरात हैं, समझ सकता है कोई बंदा? हद नहीं है उसकी, उस पावर की कोई हद नहीं, किसी चीज में आप बंद नहीं कर सकते उसको, इतना ज्यादा नबियों ने जिनसे इस्तेफादा किया है, उलमा ने लिखा है कि अंबिया में जो सिफात है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात का असर है, अंबिया में जो सिफात है वो हुजूर के सिफात का असर है, ये उलमा ने लिखा है बाजा, अंबिया के जो मौजजात है वो हुजूर के मौजजात का असर है, वो हुजूर ही के मौजजात है, अंबिया के जिम्मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी था, सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया, बहुत आलीशान मकाम, उम्मत में असरात नबी के होते हैं, उम्मत में असरात नबी के होते हैं, उम्मत में नबी का फैज होते हैं, उम्मत में जो कुछ होता है वो नबी का फैज होता है। मेराज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो आप जा रहे थे रास्ते से, रास्ते में एक बुढ़िया आपको अपनी तरफ बुलाई, फिर एक बाई तरफ से एक आदमी ने बोला, उसने फरमाया कि नहीं इससे नहीं बात करना है, आप आगे बढ़ो। आगे जाने के बाद उसने पूछा कि कौन थी वो औरत, कौन थी फरमाया, बहुत वो थी मेकअप की हुई थी, थी बूढ़ी औरत लेकिन मेकअप की हुई थी, तो उन्होंने पूछा ये कौन थी, हमारे वो दुनिया थी, दुनिया आपको बुला रहे थे अपनी, हमारा वो जो सीधी तरफ आदमी था कहने के वो यहूदियत थी, हमारा वो जो बाई तरफ आदमी था हमारा वो ईसाइयत थी। उसके बाद एक जुमला है हदीस में, हदीस की किताबों में, जो बहुत ही अजीब गरीब है, बहुत दिनों तक समझ में नहीं आता था कैसे क्या है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर आप उस बुढ़िया की तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनिया पर पड़ जाती, अगर आप उस सीधे आदमी की तरफ मुतवज्जे होते, सीधे हाथ वाले आदमी की तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत यहूदियत पर पड़ जाती, अगर आप उस बाई तरफ वाले आदमी की तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत ईसाइयत पर नसरानियत पर पड़ जाती। ये क्या बात है, मुतवज्जे हुजूर हो और उम्मत दुनिया पे चल पड़ चल पड़, मुतवज्जे हुजूर हो यहूदियत की तरह, हालांकि हुजूर को मुतासिर होने वाले नहीं थे, हुजूर को तो दुनिया मुतासिर नहीं कर सकती थी, हुजूर को तो यहूदियत मुतासिर नहीं कर सकती, हुजूर को तो नसरानियत मुतासिर नहीं कर सकती थी, हुजूर के मुतवज्जे होने पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह कहना कि अगर आप मुतवज्जे होते तो दुनिया आपकी उम्मत दुनिया पर पड़ जाती, आपकी उम्मत यहूदियत पर पड़ जाती,
आपकी उम्मत नसरानियत पर पड़ जाती। ये इशारा इस बात की तरफ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज है पूरी उम्मत में, उम्मत के एक-एक फर्द में। अब इससे अंदाजा फरमाइए कि जो मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है ये किस आलीशान सलाहियतों वाला मजमा है, अंदर की इनकी कैपेसिटी कैसी है, इनकी इस्तेदाद कैसी है। इस उम्मत का जाहिल भी, इस उम्मत का आलिम भी, इस उम्मत का देहाती भी, इस उम्मत का शहरी भी, इस उम्मत का गरीब भी, इस उम्मत का अमीर भी, इसका हाकिम भी, इसका महकूम भी, इसके मर्द भी, इसकी औरतें भी, इतनी ज्यादा इस्तेदाद वाली है जिसकी कोई हद नहीं। वजह उसकी है कि इस उम्मत में जो